दिन भर एक मई दिन सोमवार मैं हूं रेहान फदर। भारत और तुर्की ने सांस्कृतिक आदान प्रदान समेत 3 समझौतों पर दस्तखत किए।
वाइल रूमी फाउंड हिज होम इन टर्की, हिज लेगेसी कंटिन्यूज टू एनरिच।
बस्तर के सुकमा, जिसे सुरक्षा बलों के लिए सबसे खतरनाक पोस्टिंग माना जाता है, सुनिएगा सलमान रावी की डायरी।
26 गए तो कोई कैंसर
शुरू हो गया ना, रोज का जो हमेशा टाइप कर रहता है मारपीट और दुनिया भर का वाला दिखाओ निशान का है।
होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। भारत और तुर्की ने आज चरमपंथ को साझा चिंता बताते हुए इसे संरक्षण और समर्थन देने वाली ताकतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की वकालत की। भारत दौरे पर आए तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोगान के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां हमारे समाज को हर दिन नए खतरे और चुनौती का सामना करना पड़ता है। चरमपंथ के बढ़ते खतरे को लेकर हमारी चिंताएं एक सी हैं। मोदी ने कहा कि इस मुद्दे पर उनकी तुर्की के राष्ट्रपति से लंबी बातचीत हुई है। वहीं अर्दोगान ने कहा कि चरमपंथ के खिलाफ संघर्ष में उनका देश हमेशा भारत के साथ है। दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर भी बातचीत हुई। भारतीय सेना के मुताबिक पाकिस्तान की सेना ने भारत प्रशासित कश्मीर में नियंत्रण रेखा की 2 पोस्टों पर रॉकेट और मोर्टार से गोलीबारी की है। सेना की ओर से जारी प्रेस नोट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के हमले में जिन 2 जवानों की मौत हुई है उनके शवों को क्षत विक्षत भी किया गया है। पाकिस्तान ने भारत के इन आरोपों को गलत बताया है। फ्रांस में राष्ट्रपति पद की दक्षिणपंथी उम्मीदवार मरी लपेन ने पेरिस में हुई एक रैली में अपने प्रतिद्वंद्वी इमैनुअल मैक्रों पर तीखा हमला किया है। उन्होंने मैक्रों को मौजूदा राष्ट्रपति से जोड़ते हुए कहा कि वो उसी परंपरा के उम्मीदवार हैं। मैक्रों राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। फ्रांस में रविवार को 2रे दौर का चुनाव हो रहा है। मरी लपेन ने कहा,
मिस्टर मैक्रों सा ले कैंडिडेट दे ला कंटिन्यूटी।
मैक्रो इसी बीमारू परंपरा को आगे बढ़ाने वाले उम्मीदवार हैं, जिसने तमाम नौकरियों को विदेश में स्थानांतरित कर दिया और व्यापारिक गतिविधियों को नुकसान पहुंचाया। ओलांद हर दिन मैक्रो का समर्थन कर रहे हैं। वो एक दिन में कई बार लोगों से उन्हें वोट देने के लिए कहते हैं। ये थे मरी लपेन के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा को लोगों के विरोध के बाद मई दिवस पर आयोजित रैली से हटना पड़ा। इस रैली का आयोजन ट्रेड्स यूनियन फेडरेशन ने किया था। टीवी पर प्रसारित तस्वीरों में जुमा तेजी के साथ मंच से जाते नजर आ रहे हैं। बीते महीने जुमा ने अपने वित्त मंत्री को पद से हटा दिया था, तब से उन पर राष्ट्रपति पद छोड़ने का दबाव बढ़ता जा रहा है। उत्तर कोरिया ने कहा है कि वो अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाता रहेगा। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिका जब तक उत्तर कोरिया के खिलाफ अपनी कटुतापूर्ण नीति नहीं बदलता, तब तक वो अमेरिका की हर कार्रवाई का जवाब देने को तैयार रहेगा। टीवी पर पढ़े गए बयान में कहा गया, अब जबकि अमेरिका हम पर पूर्ण प्रतिबंध और दबाव बनाने में लगा है, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया अपने परमाणु तंत्र को विकसित करने की गति को बढ़ाएगा। हमारे सर्वोच्च नेतृत्व की ओर से तय समय और जगह पर हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये थे कोरिया टीवी पर जारी बयान में कहे गए शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पुरातत्वविदों का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र के विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल इराक के हतरा में 2रे संरक्षित स्थलों के मुकाबले कम नुकसान हुआ है। इस्लामिक स्टेट ने साल 2014 में हतरा पर कब्जा कर किया था। बीते महीने सरकार समर्थित सेनाओं ने हतरा को अपने अधिकार में ले लिया। चरमपंथियों ने हतरा में मूर्तियों को तोड़ते हुए तस्वीरें पोस्ट की थीं। स्थानीय पुरातत्व अधिकारियों का कहना है कि नुकसान उनकी उम्मीदों से कम हुआ है और ज़्यादातर भवन सुरक्षित हैं। तुर्की की पुलिस ने इस्तांबुल में मई दिवस के मौके पर प्रदर्शन कर रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फतल का। आज भारत और तुर्की के बीच कूटनीति, सांस्कृतिक आदान प्रदान और दूर संचार पर तीन समझौते हुए। पिछले 7 साल में तुर्की के राष्ट्रपति का भारत का ये पहला दौरा है। 2015 में G20 देशों के शिखर सम्मेलन के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुर्की गए थे। आज तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि दोनों देशों के लिए आतंकवाद एक बड़ी चुनौती है। पूरी जानकारी के साथ दिव्या आर्य।
वाइल रूमी फाउंड हिज होम इन टर्की, हिज लेगेसी कंटिन्यूज टू एनरिच।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की और भारत के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों का हवाला देते हुए अपनी बात शुरू की। उन्होंने कहा कि रूमी ने तुर्की को अपना घर बनाया, लेकिन उनसे भारत की सूफी धरोहर आज भी प्रेरित है। आतंकवाद की चुनौती का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के लिए साझी चुनौती है।
The constantly evolving threat from terrorism is our shared worry.
हमने इस पर विस्तृत बातचीत की और सहमति जताई कि आतंकी कारनामों को सही ठहराने की कोई वजह नहीं हो सकती। आतंकवादियों, उन्हें मिलने वाले पैसे और देशों के बीच उनकी आवाजाही को रोकने के लिए सभी देशों को मिलकर लड़ने की जरूरत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द। अपने संबोधन में तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान ने आतंकवाद के मुद्दे पर तुर्की के हमेशा भारत के साथ होने का दावा करते हुए महात्मा गांधी के वक्तव्य का हवाला दिया।
I would like to quote Mahatma Gandhi. Power does not come from physical capacity.
मैं महात्मा गांधी की बात याद करना चाहूँगा कि ताकत शारीरिक दमखम से नहीं आती, बल्कि जो झुकता नहीं है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। मन की शक्ति उसे सबसे शक्तिशाली बनाती है। हम भी आतंकी संगठनों के सामने नहीं झुकेंगे, उन्हें हमारे पैर बेड़ियों में नहीं जकड़ने देंगे।
राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान के शब्द। दोनों देशों के बीच सालाना $6 अरब के व्यापार को कम बताते हुए राष्ट्रपति एर्दोगान ने बताया कि उनके साथ आए व्यापारी प्रतिनिधि मंडल को प्रधानमंत्री ने संबोधित कर इसे बढ़ाने पर विस्तृत बातचीत की। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार समेत कई सुधारों पर भी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के प्रमुखों में ये सहमति बनी कि सुरक्षा परिषद को पिछली सदी नहीं बल्कि 21वीं सदी की दुनिया का प्रतिबिंब होना चाहिए। दिव्या आर्य, BBC, दिल्ली।
मैंने विश्व मामलों की भारतीय परिषद के फजल रहमान से संपर्क किया और पूछा कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा है कि कश्मीर के मामले पर बहुपक्षीय बात होनी चाहिए। ये वो तब कह रहे हैं जब वो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं और उनका ये स्टैंड भारत के स्टैंड के ठीक विपरीत है। आपकी क्या टिप्पणी है इस पर?
देखिए, ये जो स्टेटमेंट इनका है एर्दोगान साहब का, तुर्की का जो स्टैंड है कश्मीर को लेके बहुत ही वेल नोन है और तुर्की का स्टैंड जो है वो पूरी तरह पाकिस्तान ओरिएंटेड है, पाकिस्तान से गाइडेड है। वो उसकी 2-3 वजह है। एक तो पाकिस्तान से की कुर्बत, दूसरे जो पाकिस्तान का OIC में जो कैंपेन है उससे भी काफी हद तक इन्फ्लुएंस है ये स्टेटमेंट। OIC हमेशा कहता रहा है पाकिस्तान का जो स्टैंड है, लेकिन जहां तक एर्दोगान साहब ने हिंदुस्तान में आके ये कहा है तो जो इंडिया का स्टांस है बिल्कुल ये बायलैटरल इशूज है, हम किसी भी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट या इंटरवेंशन से इंडिया ने हमेशा इनकार किया है। जो उनका एक जरा काफी जो एक ट्रेडिशनल स्टांस रहा है, जितने भी हमारे डिग्निटीज आते हैं उनसे राहत के है। मुझे ये लगता है कि उनका जो पिछले 10-15 साल में जो उनकी एक फॉरेन पॉलिसी का जो एक एसर्शन है, पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है, जिस तरह से अपने आप को पॉपुलर एक फिगर देखते हैं, उसका भी एक रिफ्लेक्शन है। और इधर अगर आप देखेंगे तो 3-4 साल से तुर्की की फॉरेन पॉलिसी रीजनली बहुत ही प्रोएक्टिव रही है, तो शायद ये उसका भी एक कहीं ना कहीं से उसकी भी अक्कासी ये है कि साउथ एशिया का जो एक बड़ा ही जो फ्लैश पॉइंट है वहां पे भी आके उन्होंने अपनी एक फॉरेन पॉलिसी का जो एसर्शन उसका भी एक उसकी मतलब रिफ्लेक्शन आप कह सकते हैं।
अच्छा, ये बताइए, अगर इतिहास को देखा जाए तो तुर्की हमेशा पाकिस्तान को भारत के ऊपर तरजीह देता रहा है, इसमें कुछ बदलाव देखते हैं आप? कुछ भारत की इम्पोर्टेंस बढ़ी है या वही स्टेटस को है?
नहीं, देखिए, ये तो हमेशा ही रहा है तुर्की का पाकिस्तान का एक बहुत ही एक अजीब एक पॉलिटिकल ब्लॉक है। वो कई लेवल पर, उसको हम कहीं से भी नहीं देख सकते कि उसमें आने वाले दिनों में कहीं से उसमें कोई क्रैक या कोई दरार आने वाली है। जहां तक इंडिया का मामला है, जाहिर सी बात है इंडिया एक ग्लोबल एक इधर पिछले 10-15 साल से इंडिया ने बहुत ही अपने आप को एक ग्लोबल स्टेचर पे एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह अपने आप को प्लेस किया है, लेकिन इंडिया का जो ग्लोबल एसेशन हुआ है उसमें कश्मीर के मुद्दे पर इंडिया ने कहीं ना कहीं से ग्लोबल जो ओपिनियन है और पर्टिकुलरली जो जिसे हम मुस्लिम वर्ल्ड कहते हैं उसको इन्फ्लुएंस करने में इंडिया ने वो कामयाबी नहीं हासिल की है जो दूसरे ग्लोबल फोरा पे इंडिया ने हासिल की है। और उसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तान की जो पूरी फॉरेन पॉलिसी है, जब कश्मीर पर उनका मुद्दा आता है तो उन्होंने किसी न किसी तरह ये अरब ब्लॉक को, इस्लामिक कंट्रीज को, जो डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक हैं, एक मिडिल ईस्ट का ब्लॉक है, एक टर्की है, एक ईरान है, वो किसी न किसी तरह से कश्मीर को लेके अपने फेवर में ओपिनियन को गार्डन करने में काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं इंडिया के मुकाबले में। तो अगर हम ये कहें कि इंडिया की पोजीशन कहीं न कहीं से वो पाकिस्तान को लेके इंडिया ने बहुत हद तक एक ओपिनियन को अपने फेवर में टर्न कर लिया है या किसी हद तक इन्फ्लुएंस किया है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है।
ये थे इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के फजल रहमान। शनिवार को भारतीय कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग में भारत के 2 जवान मारे गए हैं। इतना ही नहीं, जवानों के शव के साथ बर्बरता किए जाने की भी खबरें हैं। दूसरी तरफ कुलगाम में एक बैंक वैन पर भी हमले की खबर है जिसमें 4 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। थोड़ी देर पहले मैंने श्रीनगर फोन कर BBC संवाददाता रियाज मसरूर से संपर्क कर घटना का विवरण मांगा।
हाँ जी, देखिए, ये जो नियंत्रण रेखा है पुंछ रजौरी क्षेत्र में, वहाँ आर्मी का कहना है कि कृष्णा घाटी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल निकट जो है रॉकेट फायर किए गए और मॉर्टर फायर किए गए पाकिस्तानी सेना द्वारा, जिसकी वजह से 2 सोल्जर्स, यानी एक तो सेना का एक JCO और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक हेड कॉन्स्टेबल जो है वो मारे गए। लेकिन सेना का ये कहना है कि उन के शव जब मिले तो वो दोनों शव जो है वो म्यूटिलेटेड थे, उनकी बॉडी को म्यूटिलेट किया गया था।
इसके अलावा कश्मीर में कुछ हिंसा की भी खबरें, कुलगाम में सुनने में आ रहा है कि किसी कैश वैन पर हमले की खबर है।
जी बिल्कुल, ये ऐसी घटनाएं तो घटती रही हैं पिछले 2-3 हफ्तों के दौरान जब से यहाँ अशांति है, लेकिन ये सबसे बड़ी घटना है बैंक लूटने के प्रयास के बारे में। पुलिस का कहना है कि जो संदिग्ध मिलिटेंट हैं उन्होंने कैश वैन पर फायर किया और उसको रोका, और उसके बाद जो है उस कैश वैन के साथ जो गार्ड्स थे, जो उसकी सुरक्षा के लिए गार्ड्स थे, उन गार्ड्स के वेपन भी छीने। बाद में पुलिस ने ये स्पष्ट कर लिया कि इसमें कम से कम 4 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है, और इन 4 पुलिस वालों की मौत के अलावा इसमें पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वैन में सवार जो बैंक के कर्मचारी थे उनकी भी मौत हो गई है। तो इसके बाद अब सुरक्षा बलों ने, पुलिस ने वहां पे तलाशी अभियान तो शुरू कर लिया है, लेकिन हालात वहां पे बहुत ही संवेदनशील पाए जाते हैं।
अच्छा, ये बताएं कश्मीर में इस समय किस तरह का माहौल है? आज संभवतः गृह मंत्री ने भी एक मीटिंग ली है कश्मीर के बारे में।
जी देखिए, ऐसी मीटिंग्स तो पिछले 4-5 दिन से लगातार हो रही हैं और काफी कंसर्न है दिल्ली में भी, और यहाँ की सरकार भी काफी परेशान है क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे स्टूडेंट अपराइजिंग का है, जो छात्र और छात्राएं सड़कों पर आते हैं। हालांकि 3 हफ्तों से स्कूल और कॉलेज बंद है, अब कुछ कॉलेज या स्कूलों को जब भी खोला जाता है तो वो बच्चे बाहर आ जाते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ, पुलवामा के कॉलेज में छात्र छात्राएं बाहर आए, उन्होंने भारत विरोधी प्रदर्शन किए, उसके बाद पुलिस ने टेयर गैस और लाठी चार्ज का प्रयोग करके उनको चित्रवित्र किया। लाल चौक में जो वुमेन्स कॉलेज है बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहा है इन 3 हफ्तों के दौरान। हालांकि वहां पे भी जो निकटतम हायर सेकेंडरी स्कूल, श्री प्रताप हायर सेकेंडरी स्कूल और श्री प्रताप कॉलेज, उसको जो है सरकार ने पहले ही बंद कर रखा था, लेकिन वुमेन्स कॉलेज में आज सरकार को ऐसी शंका नहीं थी कि वहां प्रदर्शन होंगे, लेकिन लड़कियां जो ही कॉलेज शुरू हुआ तो वर्दी पहने हुई लड़कियां सड़कों पर निकल आई और उन्होंने बिल्कुल उसी तरह प्रदर्शन किया जिस तरह पिछले हफ्तों के दौरान होता रहा है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि एक तरफ तो अलगाववादियों की तरफ से कोई कैलेंडर नहीं है, किसी हड़ताल की कॉल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कॉलेज और शिक्षा संस्थान जो है वो बंद पड़े हैं, उनको खोलने के लिए कोई सिक्योरिटी प्लान सामने नहीं आ रहा है।
ये थे श्रीनगर से रियाज मसरूर। इस बीच पाकिस्तान ने इस बात का खंडन किया है कि उसने लाइन ऑफ कंट्रोल पर बुट्टल सेक्टर में किसी युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। पाकिस्तानी सेना की ओर से जारी वक्तव्य में कहा गया है कि पाकिस्तानी सेना एक पेशेवर सेना है और वो किसी भी सैनिक की बेअदबी नहीं करेगी, चाहे वो भारतीय सैनिक ही क्यों न हो।
दिन भर शॉर्ट वेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,510, 9,460, 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फतल के साथ। और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां पर एक मंत्री ने सामूहिक विवाह में सैकड़ों दुल्हनों को उपहार में लकड़ी का बैट दिया है। आमतौर पर कपड़े को धोने में इस्तेमाल होने वाले इस बैट को दुल्हनों को पति के शराब पीने के बाद आक्रामक होने की स्थिति में इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है, लेकिन इसने एक नया विवाद छेड़ दिया है। भोपाल से सुरेनिया सिंह की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के गढ़ाकोटा में करीब 700 वर वधुओं का सामूहिक विवाह था। यह क्षेत्र प्रदेश के एक कद्दावर मंत्री गोपाल भार्गव का है। गोपाल भार्गव ने इस विवाह समारोह में 700 बेड दुल्हनों को बांट दिए। इसका इस्तेमाल कपड़े धोने में होता है और इसे मुंगेरी बोला जाता है। इस बेड पर लिखा था शराबियों के सुटारा हेतु भेंट। मामले को बढ़ता देख मंत्री ने कहा कि वो इसके जरिए अवैध शराब बेचने वालों को महिलाओं के जरिए काबू करवाना चाहते हैं। उन्होंने इस बात से भी इंकार किया कि इससे वो हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं।
नहीं, हिंसा नहीं करेंगे। शराब लेके आते एंटरप्राइज जो ये लकर होती जो अनाधिकृत शराब जो ठेके की नहीं होती, कभी कभी एडल्टेड भी होती है, मौतें भी होती है, लोग लिवर किडनी खराब हो जाते हैं लोगों की, ये सब चीज है। तो इस कारण से इसको रोकने के लिए, और फिर कभी कभी महिलाओं को पीटते भी है ठेकेदार अनाथराइज जो होते हैं वो माफिया पीटते भी है। तो नारी चेतना के लिए है, महिलाओं की जागृति के लिए।
गोपाल भार्गव का कहना है कि वो चाहते हैं कि महिलाएं अपने शराबी पतियों को समझाइश दें और अवैध शराब बेचने वालों पर इसका इस्तेमाल करें। वहीं उनका कहना है कि महिलाएं उत्पीड़न का शिकार हैं और यही वो चीज है जो उन्हें उससे बचा सकती है।
कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, जो आदमी जिस दृष्टि से देखेगा, सुधार की दृष्टि से देखेगा तो ठीक है, और नहीं देखेगा यदि तो फिर महिलाओं के पास चारा क्या है? फांसी लगाने के अलावा, सुसाइड करने के अलावा क्या है? रोज पिटेंगी, पिटिंग मेरे डिपार्टमेंट में ये मद्य निषेध भी आता है सोशल जस्टिस में, इसलिए यही मैंने सोचा है कि ये ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम करेगी, नहीं करेगी तो महिलाएं अपना काम करेगी। कपड़े तो धोने के लिए दी है, वो कपड़े धोने के लिए है, वो लकड़ी का वो है वो, मगर ये वो कपड़े धोने के लिए है वास्तव में, लेकिन यदि वैसी आवश्यकता आ जाए तो उसके लिए।
गोपाल भार्गव हर चीज की जड़ शराब को बता रहे हैं, लेकिन गोपाल भार्गव ने इसके अलावा भी लगभग 10,000 बैट अपने क्षेत्र की महिलाओं को बनवाकर बंटवा दिए हैं। उनका कहना है कि अगले 30 दिन बाद वो देखेंगे कि इसका असर क्या होता है। मध्य प्रदेश में शराबबंदी की मांग लगातार जोर पकड़ रही है और अगले साल चुनाव हैं, इसको लेकर भाजपा की सरकार चिंतित है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में सिलसिलेवार शराबबंदी की बात कह चुके हैं। सुरेनिया जी, बीबीसी न्यूज, भोपाल।
आज सोमवार है और आज के दिन आपको इंतजार रहता है अपने पत्रों का। आपके पत्रों के साथ हैं राजेश जोशी और वंदना।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का। और आज मेरे साथ स्टूडियो में हैं वंदना।
मेरा भी बहुत बहुत नमस्कार।
वंदना का भी नमस्कार, मेरा भी नमस्कार। और चिट्ठियां जो आप लोगों ने भेजी हैं वो वंदना के हाथ में हैं। पोस्ट कार्ड में देख रहा हूँ, बहुत बारीक लिखावट में लिखा है, कहाँ से आया है
जी?
पोस्टकार्ड
ये हैं अनिल डोबरियाल ब्रह्मचारी साहब, और गांव का नाम है बुरासी पीओ बांघाट पौड़ी गढ़वाल से इन्होंने लिखा है, उत्तराखंड से।
जी, तारीफ कर रहे हैं या आलोचना कर रहे हैं? मुझे लगता है नाराज श्रोता है हमारे।
नाराज हैं और एकदम लाल रंग से इन्होंने अंडरलाइन करके भेजा, बहुत बारीक लिखा, फिर मैं पढ़ने की कोशिश करूंगी। ये बोल रहे हैं कि कई पत्र भेजे, लगता है सारे पत्रों को बीबीसी ने कूड़े के ढेर में जला दिया।
अब ये कूड़े का ढेर तो है नहीं डोबरियाल साहब, आपकी चिट्ठी बाकायदा हमारे हाथ में है और पढ़ी जा रही है।
या बोल रहे हैं कि लगता है पुराने श्रोताओं से नाता तोड़ दिया है।
ये भी गलत बात है, क्योंकि हमारे पुराने श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं, नए श्रोता भी जुड़ रहे हैं। तो अब तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा एक बार और हमसे मुलाकात करनी पड़ेगी और अपना तमाम गिला शिकवा जो है दूर करना पड़ेगा।
जी जी। और एक ईमेल ले लेते हैं, एक वाक्य लिखा है बस इन्होंने। विजय प्रकाश जी हैं दिल्ली के ही रहने वाले, लिखते हैं कि एक जो फ्रेज जो है एक पंक्ति की कार्यक्रम में की बात करें, इन्वर्टेड कॉमा
में समझ गया हूँ। इनका नाम दोबारा बताइए।
ये है विजय प्रकाश साहब।
विजय प्रकाश साहब, आपने बिल्कुल मेरे दिल की बात कर दी है। इन साहब का कहना बहुत ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं अखबारों की बात करें तो, क्रिकेट की बात करें तो, स्पोर्ट्स की बात करें तो, और मैं देखता हूँ कि टेलीविजन में भी यही होता है, रेडियो में भी यही आ जाता है। तो पहले सजग श्रोता है जिन्होंने हमारी गलती की ओर ध्यान दिलाया है, और मुझे ये स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि ये वाकई गलती है। भाषा का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के होना चाहिए।
जी चलिए, तो मैं तो गांड बांध लेती हूँ कि कम से कम मैं आगे से बचूंगी। चलिए, तो अगला एक पोस्टकार्ड है, ये हैं एम वामदेवन नायर साहब, और ये कन्याकुमारी से लिखा है,
भारत के बिल्कुल दूसरे छोर में, दक्षिण वाले छोर से इन्होंने लिखा है।
जी जी, इन्होंने लिखा है, मान्यवर आपका प्रोग्राम क्लियर नहीं सुनाई देता, एक तरह से रोमन में लिखा है। दक्षिण भारत में भी हिंदी के जो सुनने वाले हैं ज़्यादातर, उन्होंने लिखा कि जो पूर्व सैनिक वगैरह रहे हैं। हाँ, ये बात और है कि चिट्ठी शायद नहीं लिख पाते भाषा की वजह से।
एम वामदेवन नायर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हिंदी भाषा भाषी नहीं हैं फिर भी हमारे कार्यक्रम सुनते हैं, दिलचस्पी से सुनते हैं और प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं।
जी, इन्होंने एक गुजारिश की है कि के कामराज साहब जो हैं उनके ऊपर विवेचना
बिल्कुल, रेहान साहब को ये कह दिया जाएगा, रेहान फजल से ही आपकी गुजारिश उन तक पहुंचा दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।
जी, अगला पोस्ट कार्ड है जोगाराम मेघवाल का, ये बाड़मेर से लिखते हैं हमें, और इन्होंने एक तरह से शिकायत ही बोल दीजिए कि बाबा साहब अम्बेडकर पर विवेचना होनी चाहिए थी 14 अप्रैल को, लेकिन आप तो गांधी जी पे आपने सुना दी। इन्होंने आपका नाम लेके कहा है कि आपने कभी वादा किया था।
जरूर, मुझे बिल्कुल वादा मेघवाल साहब एकदम याद है, मैंने कहा था कि जब कभी ऐसा मौका आएगा तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पर विवेचना या कोई कार्यक्रम हम करेंगे। अभी तक हम नहीं कर पाए हैं, और आज ही मेरी रेहान साहब से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे फिर से भरोसा दिलाया है कि जरूर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पे बीबीसी से हम लोग कार्यक्रम करेंगे।
अगला पोस्ट कार्ड लूं तो ये है देवेंद्र कुमार साहू, छत्तीसगढ़ से इन्होंने लिखा है, विवेचना की तारीफ की है और कहा है कि जब वो सुन रहे थे ऐसा लग रहा था जब कृपलानी जी गांधी जी के स्वागत के लिए स्टेशन पर आए तो मैं भी स्टेशन के
ये
कोने
चंपारण
पर
की बात कर रहे हैं, जो विवेचना रेहान फजल ने की थी चंपारण जब गांधी पहुंचे थे उस पर की थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और कुछ ईमेल भी ले लीजिए ताकि, मुझे लगता है 2-4 जो ईमेल मैंने पढ़े हैं उसमें हमारे संवाददाता सलमान रावी जो सुकमा से रिपोर्टिंग कर रहे हैं बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में, उनकी तारीफ।
आशुतोष कुमार पांडे, सुंदर सदन, पकड़ी चौक, आरा बिहार।
आरा बिहार से लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं?
यही लिख रहे हैं कि वसीतुल्लाह खान की इन्होंने बात की है, और साथ ही कहा है कि सलमान रावी की रिपोर्टिंग की बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो इस इलाके से काफ़ी परिचित हैं।
अच्छा, और कोई चिट्ठियाँ?
जी, और एक आपका शुक्रिया है, एहसान असगर साहब हैं महाराष्ट्र से, लिखते हैं ये
जी,
पूरी बीबीसी टीम और राजेश जोशी का धन्यवाद, जो उन्होंने बीबीसी ऐप के जरिए कार्यक्रम सुनने के दौरान स्क्रीन लॉक नहीं होती थी उसका समाधान करा दिया।
अच्छा, अब ये या इनकी समस्या सुलझ गई है, हमें बहुत खुशी है। एहसान साहब फिर से लिखिएगा, मैं आपके हाथ से ये चिट्ठियाँ थोड़े से ले रहा हूँ क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी ईमेल्स हैं जिनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं नाम ज़रूर पढ़ूंगा कि आपकी चिट्ठी हमें मिल गई है, अगली बार अगर कभी मौका मिला तो हम प्रसारित करेंगे। कुमार दीपक की चिट्ठी आई है, एक राउडी नाम से चिट्ठी आई है, विजय नो गो, इन्होंने भी कहा है कि 4 साल से बीबीसी सुन रहा हूँ और इनकी मांग है पांडुरंग शास्त्री अठावले पर विवेचना की जाए। फिर नई मंसारी की चिट्ठी है, जसदेव सिंह भरतपुर राजस्थान से लिखते हैं, उसके अलावा राकेश मुदगिल की कनाडा से भी चिट्ठी आई हुई है,
अंतर्राष्ट्रीय भी हो गया।
जी, और मोहम्मद आफताब आलम, अनिल शुक्ला इलाहाबाद से, इन सब लोगों ने, अनिल पांडे ने भी एक चिट्ठी लिखी है। आज तो मैं आपसे सबसे सिर्फ क्षमा चाहूंगा कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि आपकी चिट्ठियां पढ़ी जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। चलते चलते पता बता देते हैं, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। अगर ईमेल लिखना चाहें तो पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
बस्तर के सुकमा का इलाका सुरक्षा बलों के जवानों के लिए देश में सबसे ज्यादा खतरनाक पोस्टिंग के रूप में जाना जाता है। पिछले एक दशक में माओवादी छापामारों और जवानों के संघर्ष में सबसे ज्यादा नुकसान अर्धसैनिक बलों के जवानों को ही उठाना पड़ा है। 24 अप्रैल को सुकमा के चिंता गुफा में हुए बड़े नक्सली हमले में 25 जवान मारे गए थे। ये पूरा इलाका बाकी की दुनिया से कटा हुआ है, यहाँ आना और जाना बड़ा जोखिम भरा काम है। सुकमा के चिंता गुफा के इलाके से बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने भेजी है ये डायरी।
रास्ता ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बारूदी सुरंगों से पटी हुई सुकमा जिले के दोरनापाल से लेकर जगरगुंडा तक की सड़क पर हिचकोले खाती हुई मेरी गाड़ी आगे बढ़ने लगी तो दूर दूर तक ना तो कोई दूसरी गाड़ी और ना ही कोई इंसान का साया ही नजर आया। गर्म हवा के थपेड़ों के बीच चिंता गुफा तक का सफर बहुत ही जोखिम भरा है। कुछ ही दूरी पर सुरक्षा बलों के कैंपों में रजिस्टर लिए जवान आने जाने वाली गाड़ियों के नंबर और उसमें सफर कर रहे लोगों के बारे में जानकारी दर्ज करते हैं।
कहाँ से आ रहे हैं?
दिल्ली से आया हूँ।
ये दिल्ली से? हाँ। नहीं सर, वो हम छोड़ रहे हैं, पूछ के जाओ ना ऐसे जबरदस्ती के में एक चीज सुना देगा।
ठीक है,
दुर्गापाल दो दुर्गापाल जाओ।
कहाँ हुआ, कहाँ ये घटना?
मैं चार पाँच किलोमीटर आगे।
सेफ है जाना?
हाँ ठीक है तो इधर सेफ नहीं रहता, ये अभी मीडिया वाले आ जा रहे हैं इनके लिए ठीक ठाक।
सीओ साहब कौन है?
इधर सीओ साहब नहीं, कंपनी कमांडर।
कंपनी कमांडर, तो बात कर पाएंगे उनसे लौट के?
वापसी में हो सकता है।
ये सड़क कच्ची है, घटना के बाद से दोरनापाल से लेकर जगरगुंडा तक के रास्ते में मौजूद सुरक्षा बलों के कैंपों में मायूसी भी है और गुस्सा भी। तलाशी के दौरान सुरक्षा बल के अधिकारी बात भी करने से परहेज कर रहे हैं।
सर ये तो जबरदस्ती अंदर गए उसके कैंप के अंदर। सर सर प्लीज आप बाहर हो जाओ, पूछ के जाओ अंदर ऐसे कैसे घुस रहे हो आप। सर ये ऐसे अंदर जबरदस्ती घुस रहे हैं सर, आप गेट में आ जाओ सर।
फिर भी मोर्चे पर तैनात संतरी और बाहर पहरा दे रहे जवानों और अधिकारियों से बात करने का मौका जरूर मिला।
हम लोग कहाँ कहाँ बात कर रहे हैं?
कैंप के बाहर मौजूद जवानों ने दबी जुबान से ही सही सुकमा के सुदूर बीहड़ में तैनाती के अपने अनुभव भी साझा करने शुरू कर दिए।
लोग भी वैसा ही हैं, जो पैसा देके खरीद लिए बस ऐसी समझती, मतलब उनका कोई इससे लेना देना नहीं। अभी मानवाधिकार वाले ऐसे एक सिविलियन जाएगा कैंडल लाइट मार्च करेंगे, और अभी 26 गए तो कोई कैंडल
शुरू हो गया ना रोज का, जो हमेशा टाइप कर रहता है मारपीट और दुनिया भर का वाला दिखाओ निशान का है भग गए।
वही चीज़ है ना, फोर्स के साथ बहुत मजबूरी होती है, ऐसे बाहर से बोलना कुछ और होता है।
सुकमा स्थित वरिष्ठ पत्रकार लीलाधर राठी कहते हैं कि बस्तर के इलाके में जवानों को जिस लड़ाई में झोंका गया है, दरअसल ये उनकी लड़ाई है ही नहीं।
पूरे सुकमा में लगभग 85% जो तैनाती है वो CRPF की है, और खासकर दूसरे जो DRG अन्य जो पुलिस बल है वो तैनात हैं। लेकिन अब अगर पड़ोसी राज्य की बात करें, खासतौर पर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर ग्राउंड से लोकल पुलिस है तो वहाँ कैजुअलिटी कम है। तो कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ का जो भौगोलिक क्षेत्र है, जो भी यहाँ जंगल है, झाड़ी है और जो नदी नाले हैं, उसकी जानकारी से थोड़ा सा मेरा लगता है ये जो बाहर की जो फोर्सेस है वाकिफ नहीं है। तो या तो उनको फिर से ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो जंगल से वो वाकिफ हों।
सुकमा ही बस्तर का वो इलाका है जहाँ सुरक्षा बलों ने इस संघर्ष में सबसे ज़्यादा नुकसान झेला है। वो किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं वही जानते हैं, क्योंकि वो इस इलाके को देश में सबसे ज़्यादा खतरनाक मानते हैं। सलमान रावी, BBC, सुकमा।
और अब चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर।
BBC समाचार। भारत और तुर्की ने आज चरमपंथ को साझा चिंता बताते हुए इसे संरक्षण और समर्थन देने वाली ताकतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की वकालत की। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस मुद्दे पर उनकी तुर्की के राष्ट्रपति से लंबी बातचीत हुई है। भारतीय सेना के मुताबिक नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की सेना के हमले में 2 जवानों की मौत हुई है। सेना के मुताबिक उनके शवों को क्षत विक्षत भी किया गया है। पाकिस्तान ने भारत के इन आरोपों को गलत बताया है। फ्रांस में राष्ट्रपति पद की दक्षिणपंथी उम्मीदवार मरी लपेन ने पेरिस में हुई एक रैली में अपने प्रतिद्वंद्वी इमैनुअल मैक्रों पर तीखा हमला किया है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा को लोगों के विरोध के बाद मई दिवस पर आयोजित रैली से हटना पड़ा। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिका जब तक उत्तर कोरिया के खिलाफ अपनी कटुतापूर्ण नीति नहीं बदलता, तब तक वो अमेरिका की हर कार्रवाई का जवाब देने को तैयार है। BBC समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे शाकिर आलम, रिहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।